अभी तक हम दो ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं, तीसरे ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सूरह बकरा स्टार्ट होती है तो शुरू में किसका जिक्र है, क्या बताएंगे आप? आप क्या बताएंगे कि शुरू की, मसलन आज हमने 16 आयास तक किया है, तो शुरू की 16 आयास किस बारे में है, यानी स्टार्ट क्या, कैसे बताएंगे आप? अब ये कहेंगे ना कि इस सूरत में शुरू में तीन किस्म के ग्रोहों का जिक्र है। पहला, करने की नहीं जरूरत, सिर्फ आप सुने मेरी बात को, अच्छी तरह सुने समझे इस बात को, हर चीज लिखने की नहीं होती। आप देखें, पहला ग्रोह निकालें अपना, पुराने पाक में पीछे जाएं, अलिफ लाम मीम से लेके आयत नंबर 5 तक किस ग्रोह का जिक्र हो रहा है? मुत्तकीन का, ठीक है। फिर आगे देखिए 6 और 7 में किसका जिक्र हो रहा है? जो कुफार है। फिर आगे अगर ब्रैकेट लगानी है तो लगा सकते हैं, यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये। फिर आगे आयत नंबर 8 से लेके आगे इंशाल्लाह ताला 20 तक हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसको मुकम्मल कर लेंगे इस मजमून को इंशाल्लाह ताला। तो 20 तक किसका जिक्र हो रहा है? मुनाफिकीन। अब पूछा जाए अगर आपसे कि मुनाफिकीन का इतना ज्यादा जिक्र क्यों है, क्या वजह? मुत्तकीन का होता तो समझ भी आती, काफरों का ज्यादा होना चाहिए था, मुनाफिकीन का इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि यही लोग हैं जो, जिनको पहचानना बहुत मुश्किल है, ना उनको खुद पता है कि हम मुनाफिक हैं, ना किसी और को पता है। इससे अंदाजा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने नाम बताए थे मुनाफिकीन के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था। हाँ, कुछ मुनाफिक इतने ऑब्वियस हो जाते हैं, जैसे अब्दुल्ला इब्ने उबई था, इतने ऑब्वियस हो जाते हैं, उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि ये मुनाफिक है। रईसुल मुनाफिकीन, सारे मुनाफिकीन का बड़ा सरदार वो था। लेकिन अदरवाइज ये जाहिर है, गुले मिले सारे, उसी तरह कलमा भी पढ़ा हुआ है, नमाजें भी पढ़ने आते हैं मस्जिद में, रोजे रखते हैं, मतलब जिहाद वगैरह के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन वो है मुनाफिक, तो पता कैसे चलेगा? अब इसको पहचानना तो मुश्किल है ना फिर, ये कौन है जो सही है और कौन है जो गलत है। एक दफा एक सहाबी के बारे में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गजबे में गए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा था, तो किसी ने खड़े होकर कहा वो तो मुनाफिक है, आया ही नहीं है वो साथ में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता था कि एक दूसरे को भी वो समझने लगते कि ये फलां मुनाफिक है, किसी को भी 100% किसी के बारे में ऐसा इल्म नहीं था कि ये फला मुनाफिक है और फला नहीं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया, और आपने किसको सिर्फ बताया था? हजरत हुज़ैफा बिन यमान को, और राजदान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनका जिक्र है। अब कहने को तो ये भी काफिर ही है, क्योंकि वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन है ही नहीं, ईमान वाले है ही नहीं, अल्लाह ताला ने इनके ईमान को रिजेक्ट कर दिया, तो ईमान वाले तो ये नहीं है, हैं तो ये काफिर ही। मगर काफरों के साथ इनको क्यों नहीं शामिल, इस तरह से इन आयात में ऐसे क्यों नहीं आया कि इन्नल्लज़ीना कफरू, इनको भी कहा जाता? नहीं, इसलिए क्योंकि डिक्लेयर ही अपने आप को यही करते थे कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। एक बंदा खुद ही कह देता ना कि मैं नहीं मानता, तो वो उसकी तो पहचान आसान है। एक बंदा कह रहा है मैं मुसलमान हूं, अब आपको क्या पता, आपने तो नहीं उसका दिल देखा। तो इन बातों से कुछ चीजें जो पता चलती हैं हमें, वो ये हैं कि देखें, अल्लाह ताला के हाँ ये क्राइटेरिया नहीं है कि कोई खुद को मुसलमान डिक्लेयर कर दे तो उसको मुसलमान समझ लिया जाए, बल्कि अल्लाह ताला के हाँ क्या क्राइटेरिया है, इन्ना आमालु बिन्नियात, नियत के ऊपर डिपेंड करते हैं आमाल। नियत तो दिल में होती है ना, तो जो दिल से ईमान लाया होगा वही ईमान वाला है, उसके ईमान को कबूल किया जाएगा, बाकी किसी के ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा जो जुबान से बोलता रहे। दुनिया में भले इंसान मुतमईन रहे और खुद को मुस्लिम कहलाता रहे, मगर अल्लाह के हां वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। ये अच्छी तरह बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा ईमान अगर अल्लाह ताला कबूल करेगा तो ही हम मोमिन हैं, वरना دنیا کے رجسٹر میں ہم مسلمانوں کے خانے میں چاہے ہمارا نام لکھا ہو یا ہم نے اپنا نام مسلمانوں والا رکھا ہو، اس سے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے. کیونکہ ایمان لانا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اسی نے ایمان نہیں ایکسیپٹ کیا تو دنیا کی نظروں میں چاہے میں بہت بڑی دیندار کہلاؤں، چاہے ایمان والی کہلاؤں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا والوں کی نظروں میں ہم نے ایمان والا بن بن کے دکھانا نہیں ہے، یا دعوے کر کر کے خود کو، اعلان کر کر کے خود کو بہت دیندار ظاہر کرنے کا اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہمارا رب قبول نہ کر لے. اور رب کب قبول کرتا ہے؟ جب دل کے اندر کی بات اور زبان کی بات میچ کرے. دل کو چیک کریں کہ اس وقت میرا دل کتنا خالص، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کتنا خالص ہے، کتنا میرے اندر ایمان ہے، میرے دل میں کتنا کھوٹ ہے، کیا ہے، کوئی بھی میرے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا سوائے ایک ذات کے، اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. صرف وہ جانتا ہے کہ دل کے اندر چھپی ہوئی کیا بات ہے. اسی لیے وہ ہی بتا سکتا ہے کہ کون منافق ہے، کون مومن ہے. تو منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، کچھ نشانیاں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. مگر اصل نفاق کیا چیز ہوتی؟ کھوٹی تو ہے نفاق. کوئی چیز بھی اگر کھوٹی ہو جائے تو انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا. تو کھوٹ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کھوٹ کا پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی چیز آپ کو اپنے لیے کھوٹی پسند ہے؟ کھوٹ تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. کھوٹ تو اندر ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پہ دودھ میں کسی نے پانی ملایا، پتہ نہیں چلے گا. کوئی آپ کے اوپر اوپر سے اچھا بن کے دکھاتا ہے، اندر سے اس کے اندر آپ کے لیے نفرت ہے یا برائی ہے، تو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے. تو کوئی بھی کھوٹ کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ کو پتا چل جائے نا کہ کھوٹ ہے تو آپ کبھی نہیں پسند کریں گے. آپ کو جب پتا چل جاتا ہے کہ اچھا اس کے دل میں میرے لیے برائی ہے، چاہے اوپر سے یہ بہت اچھی بن رہی ہے، تو پسند کرتے ہیں آپ پھر اس کو؟ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں اچھا لگتا نا. تو کیسے ممکن ہے کہ اگر ہمارے اندر کھوٹ ہو اور اتنی عظمتوں والا رب ہمیں قبول کر لے؟ کیونکہ اس کو تو سارے کھوٹ پتہ ہیں. پتہ چلنے کے بعد کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا. ہاں چھپا رہے تو پھر تب تک آپ اس کو اچھا سمجھتے رہیں گے، اپنی سہیلی سمجھتے رہیں گے، لیکن جس دن آپ کے سامنے کھوٹ آ گیا اسی دن آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گی نا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی ہمارے کھوٹ جانتا ہے. اس کو تو پتہ ہے کس کے دل میں کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اخلاص ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کھوٹ سے بچا لینا، نفاق کی ایک ایک کلامت ہمارے اندر سے نکال دے. یہ بھی ایک جہاد ہے، اور یہ ڈسکس کرنے سے صرف ریموو نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عملی کوشش نہ کرے. اور عملی کوشش میں سب سے پہلے تو علم لینا ہے نا، ہمیں پتا تو چلے نفاق ہے کیا، پھر ہی ہم اس کو اندر سے نکالیں گے نا. میں نے آپ کو دعا بھی بتائی تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے. وحملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ. مسنون دعا ہے نا یہ. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تو دلوں کو ہماری پاک کر دے نفاق سے. بہت امپورٹنٹ دعا ہے. تو نفاق کی کچھ علامات تو ہم نے پڑھ لی ہیں، کیونکہ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا، اس لیے ایک ایک علامت پہ غور کرنا ہے اور سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے ایک مرر ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم چیک کریں کہ یہ چیز تو نہیں ہے میرے اندر، یہ چیز تو نہیں ہے میرے اندر. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کسی اور کو منافق ڈکلیئر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کیونکہ منافقت کہاں ہوتی، میں نے آپ کو کیا بتایا، کھوٹ کہاں ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے اندر. اور کوئی بھی ہم میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کے اندر کو جانتی ہوں. ہاں ہو سکتا ہے آپ کو یہ کوالٹیز کسی کے اندر ایک دم سوچ میں آئے کہ ہاں فلاں کے اندر یہ ہے، फला लोग हैं या फला बंदी है, उसके अंदर ऐसी बात है, लेकिन आप उसको मुनाफिक नहीं कह सकती। नंबर टू क्या बात है, आप खुद को महफूज ना समझे, कोई भी नहीं खुद को महफूज समझे। देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फिक्र है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूं, तो हमें कितनी फिक्र होनी चाहिए फिर। और अगर हजरत हंजला को ये फिक्र है कि वो ये कहते फिर रहे हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, एक सहाबी रसूल हैं, पक्के सच्चे हैं, ईमान वाले हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, हंजला मुनाफिक हो गया। तो हजरत अबू हुरैरा ने पूछा था, सुभान अल्लाह ये क्या बात है। तो कहने लगी कि मैं जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत का जहन्नुम का वाज फरमाते हैं, उस वक्त तो मेरी हालत ये होती है जैसे कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूं, और जब मैं वहां से चला जाता हूं, बीवी बच्चों में जाता हूं, घर में जाता हूं, जायदाद के किस्से होते हैं, उनमें ऐसे मशगूल हो जाता हूं कि कुछ याद ही नहीं रहता। तो हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी यही सुन रहे थे, फरमाने लगे वल्लाही मेरी भी यही हालत होती है, चलो जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह हंजला तो मुनाफिक हो गया। फरमाया क्यों? कहने लगे या रसूलल्लाह खुद खुद ही कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैं आपकी खिदमत में होता हूँ तो ईमान की हालत कुछ और होती है, घर जाता हूँ तो कुछ और होती है, बीवी बच्चों में दुनिया के धंधों में लग जाता हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम्हारी हमेशा वही हालत रहती ना जो मेरे पास रहती है, तो फिर तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पे और रास्ते में आकर तुमसे मुसाफहा करते, शेक हैंड करते। लेकिन हंजला ये हालत कभी कभी हुआ करती है, यानी एक जैसी नहीं रहती। सुभान अल्लाह, यानी कभी सोचे, उनको इतनी फिक्र होती थी कि उनको इस बात से परेशानी हो गई कि सुभान अल्लाह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं, कुछ और ईमान की हालत है, घर में गए कुछ और हो गई, इसका मतलब हम मुनाफिक हो गए, वहां पे कुछ और घर में कुछ, क्योंकि मुनाफिक तो यही होता है ना, इधर कुछ उधर कुछ, सामने कुछ पीछे कुछ, दिन को कुछ रात को कुछ, जाहिर में कुछ बातिन में कुछ। तो इसलिए उनको परेशान हो गए कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, हाय मैं तो मुनाफिक हो गया, देखो मैं घर जाता हूं तो मैं कुछ और ही हो जाता हूं, उस वक्त थोड़ी मैं ऐसा रहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ईमान का घटना बढ़ना तो होता है, कभी ईमान नीचे चला जाता है, लेवल ऊपर चला जाता है, कभी फिर डाउन हो जाता है। तो जितना इंसान दुनिया के धंधों इसमें रहता है, इल्म की मजलिस से दूर रहता है, सालेहीन की मजलिस से दूर रहता है। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस तो अल्लाह के जिक्र की मजलिस होती थी, इल्म की मजलिस होती थी, जितनी देर उसमें रहेंगे ईमान का लेवल बढ़ता जाएगा, और जितना फिर आप उससे दूर रहते हैं बाकी दिन, आप खुद देखें जिस दिन आप क्लास में होते हैं उस दिन ईमान का लेवल क्या होता है, और ड्यूरिंग द वीक फिर कैसे होने लगता है, डाउन होता है ना। तो ईमान के लेवल्स हैं, हो सकता है ईमान का लेवल कमजोर हो जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मुनाफिक हो गया। तो मुनाफकत हम नहीं जान सकते, ये अल्लाह ताला को पता है कौन मुनाफिक है, तो हम किसी के ऊपर फतवे ना दें। आप इसे अंदाजा कीजिए कि उसामा बिन ज़ैद जो थे एक जंग में थे और काफिर से लड़ रहे थे, तलवार लेके जब उसके ऊपर पहुंच गए, उसकी तलवार गिर गई और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। इन्होंने तलवार जब उठाई तो कहने लगे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब जाहिर है, साफ पता चल रहा है कि अभी तो काफिर था और अभी जान बचाने के लिए मुसलमान हो रहा है। तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके वाक्या सुनाया कि इससे इस तरह उसने किया, और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ना फौरन कलमा पढ़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसका सीना चीर के देखा था, क्या तुमने उसका सीना चीरा था, देखा था कि उसने ये दिल से कहा या नहीं कहा, तुम्हें क्या पता कि उसने दिल से कहा या नहीं कहा। तो इस बात से क्लियरली पता चलता है कि अगर हजरत उसामा बिन ज़ैद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हालांकि बात बिल्कुल ऑब्वियस है, जाहिर है उसने इसी वजह से कहा होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या, तुम्हें पता है उसके दिल का, अगर उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया, जब तुम किसी के दिल का हाल नहीं जान सकते, चाहे हालात बिल्कुल ऐसे हैं, साफ जाहिर है, फिर भी ही नहीं तुम कह सकते, तो आप सोचें फिर कोई और कैसे कह सकता कि फलां मुनाफिक है। और एक और तीसरी बात भी नोट कर लीजिए कि मुनाफिक हर जमाने में होंगे। कभी भी ये सोच के इन आयात को ना पढ़िएगा कि ये मदीना में रहने वाले औस और खजरज में या यहूद में जो लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए थे उसके बाद वो मुनाफिक हो गए, ये उनकी बातें हो रही हैं, ये सारा उनका जिक्र हो रहा है। अगर आपने ये सोचा ना तो ये आयात आपके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगी। क्योंकि याद रखें ये सिफात हर जमाने में लोगों में होंगी। आप मुंह नहीं खोल सकते किसी के बारे में कि ये मुनाफिक है, मगर ये नहीं कह सकते कि आज नहीं मुनाफिक, ये हर जमाने में होंगे। और हमें सबसे पहले अपनी फिक्र करनी है ये हमारे अंदर ये जर्म्स तो नहीं आ गए, ये बीमारी तो नहीं लग गई। क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये मर्ज है, ये बीमारी है। सहाबा कराम एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे कि या रसूलुल्लाह, कुरान पाक की बाज आयतें तो हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी ढारस होती है, बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी उम्मीद बन जाती है, और बाज आयतें तो हमारी कमर तोड़ देती हैं, ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी की पहचान साफ साफ बता दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम से मुफ्लिहून तक पढ़ के फरमाया, ये तो जन्नती हैं। सहाबा ने खुश होकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनके अंदर ये सिफात थी। फरमाया हमें उम्मीद है कि हम इन्हीं में से होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नल्लज़ीना कफरू से लेके अज़ाब अज़ीम तक ये आयात तिलावत फरमाई और फरमाया ये जहन्नमी है। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं है। और ये वाले जो है ना, अब इसके बाद वाले जो लोग हैं इनके बारे में तो इंसान अब अपना मुहासबा खुद ही करे अच्छी तरीके से तो पता चल सकता है। अदरवाइज वही वाली बात है कि अगर इंसान अपने आप को धोखे में रखता रहे और अपने आप से झूठ बोलता रहे, नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, नहीं मेरा तो ये, तो बीमा क्या नू यख दीबून, क्या हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बवजह इसके जो वो झूठ बोलते थे, वो झूठ बोला करते थे। मुनाफिकीन की ये अलामत है, जो तीन अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। पहली निशानी क्या है, जब बात करता है झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलना, अपने आप से भी झूठ बोलता है, नहीं मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, अपने आप को अपने अंदर ही तसल्ली दिलाता जा रहा है, तो किससे झूठ बोल रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को। वमा युखादिउना इल्ला अनफुसहुम, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। अब अपने आप से झूठ बोलेंगे कि मेरे मेरे अंदर तो ये नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। तो पहली निशानी क्या है, झूठ बोलते हैं। दूसरी निशानी क्या है, जब वादा करता है तोड़ देता है, वादे का उसको पास नहीं होता कि जब मैंने किसी से प्रॉमिस किया है, मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई अहद किया है, तो मैंने इसको पूरा करना है। नंबर थ्री, जब अमानत उसके पास रखी जाती है खयानत करता है। और हदीस में इससे आगे जो बात है ना वो बहुत खतरनाक बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा के फरमाया, खा वो रोजा रखे खा नमाज पढ़े और ये समझे कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगर उसके अंदर ये तीन अलामत हैं तो वो मुनाफिक है। और एक और हदीस में चौथी भी अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इन तीन के अलावा, और वो क्या है कि जब झगड़ा करे, जब झगड़ा हो ना तो गालम गलोच पे उतर आए, झगड़ा करते वक्त इतना अपने से बाहर हो जाए कि उसको यही नहीं पता, फिर उसकी बाद जुबान जो है ना क्या मुगल्लेजात निकल रहे हैं जुबान से, क्या गालम गलोच निकल रही है, कोई होश ही नहीं है, अब पता ही नहीं चल रहा कि ये वही बंदी है जो पहले आगे पीछे तो इतनी काम एंड कूल रहती है, अच्छी भली बड़े अच्छे अखलाक की रहती है, इसको क्या हो गया, यानी झगड़ा हुआ नहीं तो असलियत निकल आई अंदर से, वो जो अंदर था ना वो बाहर आ गया, ये मुनाफिक की निशानी है। और मुनाफिकीन वल मुनाफिकात कुरान कहता है मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, इसका मतलब औरतें भी मुनाफिक होती हैं। اللہ اکبر استغفر اللہ رب. چلیں جی اب دیکھتے ہیں آیت 11 سے. ان سے ایک چیز کا ان کو حکم دیا گیا اور ایک چیز کا اسے ان کو روکا گیا. آیت 11 میں وہ ہے جس سے ان کو روکا گیا اور آیت 13 میں وہ ہے جس کا ان کو حکم دیا گیا یعنی ان کو کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے, کس کو کہا جاتا ہے؟ لَهُمْ ان سے. کن سے؟ کن سے کہا جاتا ہے؟ یہ جن کی بات پیچھے ہو رہی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ, ہم ایمان لائے آخرت پہ, جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ کرو. فساد فی الارض کیا ہے؟ ان کو اس سے منع کیا جاتا ہے. کیا ہے فساد فی الارض؟ فساد فی الارض کی سمپل سی اگر آپ کو بات کی جائے نا, ایک تو وہ فساد ہے نا کہ درختوں کو کاٹ دینا, خون خرابہ کرنا, کرپشن کرنا, یہ سب چیز فساد ہے. اگر یہ ایک لمیٹڈ معنی ہے, فساد کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اس پہ کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ کس کی مرضی کے مطابق یہاں پہ زندگی گزارنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی نا. جب جس کا گھر ہے آپ اسی کے مطابق چلیں گے, یا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی مرضی چلاؤں گی؟ تو زمین کس کی ہے یہ بتائیں. سبحان اللہ, کسی کو کہتے ہوئے یہ سنا کہ ہم آزاد ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ پابندیاں کیوں ہیں اسلام کی؟ اسلام ہمارے پر پابندی کیوں لگاتا ہے, کبھی حجاب کی, کبھی کس کی؟ اللہ اکبر, تم کس کی زمین پہ رہ رہے ہو بھائی؟ گھر میں تو کوئی آ جائے تمہارے اور کہے میں اپنی مرضی چلاؤں گی, یہ چیز یہاں رکھو, وہ چیز وہاں رکھو, اس وقت اٹھو, اس وقت سو, تو تم کہو گی تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میرا گھر ہے, اس میں میرا حکم چلے گا. اتنی تو سینس ہے, اتنے عقل مند ہیں کہ اپنے گھر میں تو اپنی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی چلنے نہیں دیتے, اور زمین پہ سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی چلے اور اللہ کی مرضی نہیں چلنی چاہیے. یا تو یہ کہہ دو یہ زمین ہماری ہے. جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ اللہ کی ہے تو پھر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا. فساد فی الارض کیا ہے؟ جو بھی اس کے خلاف کرے, جو بھی اس کے خلاف کرے, جو بھی یہ کہے کہ یہاں پہ میری مرضی چلے گی یا یہاں پہ فلاں کی مرضی چلے گی یا اللہ کی مرضی نہیں چلنی, یہ سب فساد ہے. فساد جب آپ نے اللہ کو خدا مان لیا, الہ مان لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا, تو آپ ان کی بات کو فالو کرنا پڑے گا. جو حکم وہ دیتے ہیں وہ ماننا پڑے گا. جب اس کے خلاف کیا جاتا ہے, اس کا انکار کیا جاتا ہے, تو یہ فساد ہے. ایک بندہ اگر یہ بھی کہہ دیتا ہے اتنی بات بھی کہ میں اپنی مرضی کروں گی, اسلام کون ہوتا ہے کہ ہمارے پر پابندیاں لگائیں؟ آپ تو کہتے ہیں اسلام بڑا لبرل ہے اور اسلام بڑا فریڈم دیتا ہے, ابھی پھر اسلام ہمارے پر پابندی کیوں لگاتا ہے؟ تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام میں تم نے جب کہہ دیا کہ اللہ میرا الہ ہے تو آپ نے تو اس کو مالک مان لیا, پھر آپ یہ کیسے کہتی ہیں میں اپنی مرضی کی مالک ہوں؟ آپ نے تو اپنی مرضی کو الہ بنا لیا. پھر یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے. اس معاملے میں کس کو خدا بنایا؟ اپنے نفس کو, اپنی مرضی کو. نفس بھی آپ کو پتا ہے پوجا جاتا ہے, پتا ہے آپ کو؟ بلکہ یہ ایسا الہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ نفس ہے, ورسٹ ہے, کیونکہ اس کا تو کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں ہے, ورسٹ ہے یہ. اور آج سب سے زیادہ اسی کی پوجا کی جاتی ہے. مجھے جو پسند ہے میں وہ کروں گی, جو نہیں پسند میں نہیں کروں گی. کیا حلال ہے کیا حرام ہے, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے بس یہ چاہیے تو بس میں, بس مجھے چاہیے چاہے کہیں سے بھی ملے, اور میرا یہ دل چاہتا ہے تو میں یہی کروں گی. یہ جسم میرا ہے, میری مرضی چلے گی اس پہ. تو آپ خدا بن رہی ہیں اپنی, خود خدا بن رہی ہیں. तो ये मैं आपको एक इंडिविजुअल की एग्जांपल दे रही हूं। इज्तमाई जिंदगी में भी आप इसी तरह देखें कि अगर आप माशरे में भी कहते हैं कि जो हम कानून बनाएंगे वही चलेगा, अल्लाह का कानून नहीं चलना, हमारा कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लोग बनाएंगे, इंसान बनाएंगे, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, तो वो भी आपने कह दी किसको बना लिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इला बना लिया, इन लोगों को इला बना लिया। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, जो लोग कहेंगे उसी तरह होगा, जो माशरे का आजकल चलन है मैं उसी तरह करूंगी, तो आपने तो माशरे के चलन की बंदगी शुरू कर दी। बजाहिर चाहे आप कितना भी ईमान का दावा करते रहें, मगर हकीकत में यही तो फसाद है, चाहे इंडिविजुअल्स की लाइफ में हो चाहे सोसाइटी में हो, ये फसाद है, ये बगावत है। अब चाहे अब आप कहें, अब हम चूंकि फसाद को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं ना, हम सोचते हैं फसाद मतलब है कत्लो गारत, ये वो किडनैपिंग हो रही है, लूट मार हो रही है, सारा फसाद है। और देखो ये वेस्ट के अंदर तो अमनो अमान है, यहां पे फसाद नहीं है। नहीं, फसाद का ये मतलब नहीं है, फसाद का मतलब यही है कि जहां पर भी अल्लाह की बंदगी को छोड़ के किसी और की बंदगी की जाए, ये फसाद है, ये फसाद है। और फसाद फिल अर्थ बहुत बड़ा जुल्म है। फिर इसी तरह इन मुनाफिकीन के एंगल से देखा जाए तो देखिए फसाद, वो क्या फसाद करते थे मुनाफिकीन, एक तरफ मुसलमानों के साथ मिलके मुसलमान बने हुए थे और दूसरी तरफ वो काफरों के पास जाते थे और उनको भी कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, डबल पॉलिसी। और वहां पे जाके मुसलमानों के बारे में जो बातें थी वो करते थे, उनको इनके खिलाफ उकसाते थे, इधर की खबरें जाके उधर पहुंचाते थे, जंग के शोले भड़काते थे। तो ये फसाद है। तो देखिए हालांकि अपनी तरफ से वो कहते थे हम बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, हम मुसलमान हैं, मगर अगर नीयत सही नहीं है फसाद ही तो हो रहा है। बजाहिर नजर आने वाला काम अगर कितना भी अच्छा हो कि ये मुसलमान है, कलमा गो हैं, बजाय तो बड़ी अच्छी बात है, फलाने काफिर हैं, वो तो बहुत बुरे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, तो देखें हालांकि ये जब अंदर से सही नहीं है, अंदर आपका खराब है, तो फसाद है। चाहे बाजाहिर कितना भी अच्छा वो काम क्यों ना नजर आ रहा हो। तो मुनाफिक हमेशा चूंकि ये सोचते थे ना किसी से झगड़ा करने की क्या जरूरत है, सच्चाई की खातिर स्टैंड लेने की क्या जरूरत है, क्या मुसीबत पड़ी हुई है तुम लोगों को, जो कोई करता है करने दो उसको, ऐसे खाम खा उनसे जंग लेने लगे हुए और मक्का वालों से जंग ले रहे हैं, वो इतने पावरफुल हैं भाई, तुम्हारे पास कुछ है नहीं और तुम ऐसे ही इतने उनके साथ उनके खिलाफ खड़े हो रहे हो, इधर भी हां में हां मिलाते जाना, उधर भी जा जाके उनकी हां में हां मिलाते जाना। मैंने आपको बताया था ना जैसा देश वैसा वैसा भेस। तो इनके लिए कोई सच्चाई की खातिर कुर्बानी देना, वक्त लगाना, किसी को कन्विंस करना, ये बेवकूफी के काम थे। वो कहते थे बस दीन में हमारे लिए सिर्फ इतना ही एक्सेप्टेबल है कि नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, बाकी ये क्यों कर रहे हो कि किसी के साथ मतलब है कि कोई मुखालफत लेना, मोल किसी के खिलाफ खड़े हो जाना, ये जंगों के लिए तैयार हो रहे हो, ये क्या जरूरत है, ये नहीं करना चाहिए। वही बात है ना, इनसे ना इधर पूरे थे ना उधर पूरे थे, दोस्ती बुत से है, काबे से शनासाई भी, इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, हम हमारी दुनिया का ना कोई नुकसान हो जाए, अगर ये लड़ाई झगड़े शुरू हुआ तो हम किधर जाएंगे फिर। जब कहा जाता है ना कि आप या इधर हो या उधर हो, डिसाइड डिसाइड करें आप किसकी साइड पे, ये मौका ना आने पाए, क्योंकि अगर डिसाइड करना पड़ गया तो फिर हम किधर को जाएंगे, हम इधर भी बना के रखें उधर भी बना के रखें, ये हर तरफ बना के रखो भाई, क्या पता कल को किससे जरूरत पड़ जाए। इसीलिए आगे है ना पालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो ये चाहते नहीं है ये खून खराबे हों, ये ऐसे हों, हम तो चाहते हैं कि सुलह सफाई से भाई रहो, ठीक है वो उनको अपना करने दो जैसे वो करते हैं, हमें क्या जरूरत है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मिशन क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दीन हक लेकर आए थे, इसके लिए खड़े हो गए थे, इस दीन को फैलाने का काम, इसको जारी करने का काम, ये मिशन था आपका। ये कह रहे थे कि क्यों ऐसा ऐसा मत करें। तो देखिए, ऐसे लोग हर जमाने में होते हैं। ये वो दावा करते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं, हालांकि वो अपना मफाद बचाने वाले होते हैं कि हमारा फायदा ना उसको ज्यादा ना पड़ जाए। अगर यहां पे कोई मसला हुआ तो फिर हमारा क्या बनेगा। ये आस्तीन का सांप है ना, इसको कहते हैं आस्तीन का सांप। तो ये इसलाह के नाम पे फसाद करने वाले हैं। तो अब इनके बारे में यहां पे ये कहा जा रहा है, इनको रोका जा रहा है। इसका मतलब कोई रोकने वाले भी थे, कहने वाले थे ना करो ऐसे। तो वो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। इसका मतलब यहां पे क्या पता चला, एक बात और पता चल रही है। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, क्या कैरेक्टर पता चलता है यहां से मुनाफिक का। अपनी गलती कभी नहीं मानता, कभी नहीं ये मानेगा कि हाँ नहीं मैं गलत कर रहा हूं, ये सही नहीं है। देखिए, अगर गलती मान जाए तो फिर इसलाह ना हो जाए, फिर अपने आप को फिक्स कर सकता है, लेकिन वो गलती नहीं मानेगा। नहीं, इन्नमा इन्नमा का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ यही बात है, इसके सिवा कोई बात नहीं। क्या बात है वो, हम तो सिर्फ इसलाह करने वाले। फसाद का हम कहां फसादी हैं, हम तो भाई लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई भी एक दूसरे के साथ कोई भी जंग या कोई एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी या कोई मुखालफत या ये चीज हो ही ना, तो इसलाह करने वाले। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला के इनके बारे में क्या ऐलान है। अला सुन लो, चाहे तुम कहते हो हम इसलाह करने वाले, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, बेशक वो ही, और फिर दोबारा हुम, यही तो है मुफसिद, यही मुफसिद है। ये कहते हैं हम मुस्लिह हैं और मुस्लिह के अलावा कुछ नहीं है, नहीं ये मुफसिद है और मुफसिद के अलावा कुछ नहीं है। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन ये शऊर नहीं रखते, इनको पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, समझ ही नहीं है इस बात की। इसका मतलब शऊरी मुनाफिक कोई और होता है, जो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो वाकई सोच समझ के आया हो कि हाँ मैं इस तरह करूंगा, मैं जासूसी करूंगा, मैं मुसलमान तो नहीं हूं। मिसाल के तौर पे कोई हिंदू है, वो अगर अपनी भेष बदल के मुसलमान बन के और किसी मस्जिद में जाके वो इमाम बन जाता है, वहां पे उनको नमाज भी पढ़ा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसको पता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं और मैं सिर्फ इनकी जासूसी करने आया हूं। तो ये तो एक वो मुनाफिक है जो शऊरी मुनाफिक है, जिसको पता है, लेकिन ये ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं है, और वो अपने आप को बने बैठे हैं कि नहीं, हम तो इसलाह कर रहे हैं, हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि बहुत सारे लोग दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि वो कहते हैं हम तो फसाद नहीं कर रहे, हम तो इसलाह कर रहे हैं, हालांकि वो इसलाह नहीं होती, वो फसाद है जमीन पे। अल्लाह की जमीन पे लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करना फसाद है। वो कहते हैं हम इसलाह कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं सब चीज अच्छी रहे, सब चीज सही हो जाए। इस्लाम के नाम पे ही इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर वाकई इंसान को पता ही नहीं चलता तो फिर हमें क्या दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन, है अल्लाह हमें हक को हक करके दिखाना, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होता है कि हक इंसान के सामने धुंधला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता हक है क्या, वो बातिल को हक समझ रहा होता है, वो उसकी साइड दे रहा होता है जो हक ही नहीं है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरजुकना इत्तिबाहु, और अल्लाह हमें उसको फॉलो करने की भी तौफीक देना। वो आरिन अल बातिला बातिनन, और अल्लाह बातिल को बातिल करके दिखाना हमें। वह रजुक नजतिनाबा हुआ, और उससे इजतनाब की तौफीक देना अल्लाह, कि हम उसे बच जाएं। तो बातिल को बातिल और हक को हक करके दिखा दे हमें, क्योंकि ये जो ग्रे एरिया है हमें समझ नहीं आती, हम किस तरफ जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक वक्त आएगा कि ऐसा फितना होगा कि लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि हक क्या और बातिल क्या। इतनी कंफ्यूजन होगी लोगों में, क्या चीज सही है और क्या गलत है। और आज वो वक्त है, समझ ही नहीं। कई लोग इस्लाम के नाम पे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, कई लोग इस्लाह के नाम पे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, कई लोग अल्लाह के दीन को फैलाने के नाम पे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो बातिल है, जो दीन को नुकसान पहुंचाने वाली है। अब चूंकि इस्लाम के नाम पे और होता है, अब समझ नहीं आती क्या इसका साथ दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्या इनके पीछे चला जाए कि नहीं चला जाए। लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हर एक्टिविटी के पीछे देखें, क्या इससे इस्लाम को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, क्या ये इस्लाम फैलने के लिए, क्या इसकी वजह से अल्लाह का दीन गालिब आ रहा है या अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंच रहा है। पता चल जाएगा आपको क्या हक है और क्या बात है, इसका नतीजा क्या है, रिजल्ट से पता चल जाएगा ना। तो यहां पे भी तो ताकीद है, हुमुल मुफ्सिदून, हुम और हुम दो दफा है, जैसे कि हम कहते हैं ना यही तो है, यही है मुजरिम, यही तो है, यही वो लोग हैं जो जो कातिल है। तो इसलिए ताकीद की वजह से आया है यहां पे। और दूसरा मुतालबा इनसे क्या किया जाता है, अब कुछ करने को कहा जा रहा है। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है इनसे आमिनू, ईमान ले आओ। अब देखें सुभान अल्लाह, वो तो कहें हम तो ईमान लाए हैं, तो हमने नहीं कलमा भला पढ़ा हुआ, तो कलमा तो उन्होंने पढ़ा हुआ था, फिर क्यों कहा जा रहा है ईमान लाओ। नहीं, तुमने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन भाई ये ईमान लाना जो है ना, ये इज नॉट एक्सेप्टेबल। अल्लाह ताला ने फरमाया ना वमा हुम बिमुमिनीन, इसका मतलब हर एक कलमा पढ़ लेने वाला को अल्लाह ताला ईमान एक्सेप्ट नहीं कर लेता। क्राइटेरिया क्या है फिर, कौन सा ईमान अल्लाह ताला एक्सेप्ट करते हैं, मुझे कौन सा ईमान लाना है, मेरा ईमान किसकी बेस पे चेक होगा कि भाई ये सही भी है या नहीं है। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। हम तो सारे कहते हैं हम ईमान वाले, फिर कैसे पता चलेगा। वाइदा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसे ईमान लाए लोग। वो कौन से लोग हैं, अन्नास, अलिफ लाम लग गया ना, तो स्पेसिफिक है, प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझती है ना, जैसे एक किताब है अ बुक और अल किताब द बुक, तो द बुक जब कह देते हैं तो क्या मतलब होता है, कोई स्पेसिफिक बुक है, नॉट एनी बुक। तो अन्ना तो मतलब कोई स्पेसिफिक लोग हैं, प्रॉपर नाउन है, कौन लोग हैं ये। तमाम का इजमा है इस बात के ऊपर कि ये सहाबा कराम है, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, हजरत उस्मान, और जो अशरा मुबशरा हैं, और ये सारे बिलाल हबशी, सुहेब रोमी, अब्दुल्ला बिन सलाम, ये सारे जो थे ना, ये उनके जैसा ईमान लेकर आओ। सुभान अल्लाह, यानी ईमान का क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने वो इतनी बार ऊंची कर दी है कि ये यहां तक पहुंचना है तुम्हें, इनके जैसा ईमान लेकर आओ। समझे, हम सबको ये बात समझने की है कि अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बता दिया कुरान में, अगर तुम चाहते हो कि तुम ईमान वाले कहलाओ तो इनको क्राइटेरिया बनाओ, इनके जैसा ईमान लाओ। ये सिर्फ उनको नहीं कहा था, हम सब के लिए है ये, इस पे अल्लाह ताला परखेंगे। समझ आई, ये जो तुम्हारा दिन रात दीनदारी की रट लगाना, दीन का लबादा ओढ़ के फिरना, हिजाब कस लिए, बाय पहन लिए, बस जी हम तो सबसे नेक हो गए, मर्दों ने दाढ़ी रख ली तो चलो वो तो बस फिर और भी ज्यादा क्या हो गए, शलवार ऊंची कर ली वो तो और भी आगे हो गए, तो बस अब हम तो बहुत ईमान वाले हैं, हम तो कितने दीनदार हैं। और कुछ और लोगों ने और क्राइटेरियाज बनाए हुए, हम इतनी मेहमान नवाजी करते हैं ना, और मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद के लिए भी मैं उठती हूँ, और मैं लोगों के साथ बहुत अच्छी हूँ, मेरे मैं हमसायों के साथ बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी ईमान हूँ। सबके पास कोई ना कोई क्राइटेरिया, हम बस उसके ऊपर ना अपने आप को परख के और मुतमईन होके बैठ जाते हैं, बस हमसे ज्यादा अच्छा कौन है। आपके आपके नजदीक भी हो सकता है कोई क्राइटेरिया हो, लेकिन क्राइटेरिया मैंने और आपने डिफाइन नहीं करना, क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए यहाँ पे। कमा आमन नास, जैसे ये लोग ये ईमान लेकर आए, ऐसा ईमान अल्लाह ताला को चाहिए। अब आप अपना क्राइटेरिया जो मर्जी बना के फिरते रहे, जिसने एक्सेप्ट करना है ना वो बता रहा है, जिसने कबूल करना है, और उसने ना कबूल किया तो रिजेक्टेड है। चाहे आप इतने बड़े बड़े स्लोगन रेज करें, चाहे आप इतने बड़े बैनर लगा लें, चाहे माथे पे लिख के लगा लें कि मैं ईमान वाली हूं, चाहे हाल हुलिया उठना बैठना वैसा बना लें। तो मुनाफिकीन नहीं क्या जाते थे मस्जिदों में, बाजमात नमाज पढ़ते थे ना, तो अब उनके कहने से क्या ईमान वाले हो गए वो? नहीं, अल्लाह ताला को ये ईमान चाहिए। सुभान अल्लाह। अब इसके ऊपर तो इंसान सोचता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा ईमान क्या है, क्या लेवल है हमारे ईमान का। अच्छा ये नहीं है, सुभान अल्लाह, ये नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं होती थी, कि वो सहाबा कराम है, उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी, नहीं। मगर हाँ, मासूम माने तो सिर्फ अंबिया हैं, हाँ, मगर अल्लाह ताला ने इनको बचा के रखा, इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मिली। फिर ये कि इनसे गलतियां हुई हैं, इनसे भी गलतियां हुई हैं, मगर इनकी नेकियां इतनी ज्यादा थी और इतनी बड़ी बड़ी नेकियां थी इनकी कि अल्लाह ताला ने इनके गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम तो ऐसे बन ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ कौन गलती से पाक है। नहीं, ये गलतियां इनसे भी होती थी। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए, मगर ये कैसे लोग थे, थोड़ा सा देखना चाहते हैं कैसे लोग थे। ये वो लोग थे जो जब ईमान लाए ना, तो इन्होंने अपना तन मन धन सब अल्लाह के नाम डेडिकेट कर दिया। समझ आई? ये वो लोग थे कि अल्लाह ताला की तरफ से जिनके लिए ऐलान हो गया रदी अल्लाहु अनहुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह ताला के हर फैसले पे राजी रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों हमारे साथ हुआ, मुश्किल क्यों आई, आजमाइश क्यों आई, हमने ईमान लेकर आए और देखो हमारे पर ये मुसीबतें आ गई, अच्छा इस्लाम लाए हैं हम। ये तो मुनाफिकीन की बात थी। हम कोई जरा सा अल्लाह का हुक्म पूरा करने लगे ना और कोई मुश्किल आ जाए, अब कुरान की तरफ ही आते हैं तो कोई मुश्किल आ जाती, अच्छा मैं कुरान की तरफ आई, मुझे तो ये मिला, हमारे पर तो उसके बाद इतनी मुश्किलें आई ना, हमारा तो कारोबार ही डूब गया। ऐसे हमारी शिकायतें होने लगती हैं, वो इस्लाम लाए और उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए, लेकिन वो राजी हैं अल्लाह की रजा में। तो अल्लाह ताला ने भी उनको सर्टिफिकेट दे दिया। ये सर्टिफिकेट है, ये समझ लीजिए, ये ग्रेजुएट्स हैं, ये ग्रेजुएट कर गए हैं। अल्लाह ताला ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि अल्लाह इनसे राजी हो गया। क्योंकि वो अपने रब की रजा के लिए हर दुख हर तकलीफ सहने को तैयार हो गए थे। देखिए जरा हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला को, ईमान लाए तो क्या हुआ था, कोई मेडल पहनाए गए थे उनको, लोहे की जिरा पहना के धूप में डाल दिया जाता था, लड़के इनके गले के अंदर रस्सी डाल के और घसीटते फिरते थे मक्के की गलियों में। सोचें, एक आपके सामने कभी ये मंजर आए, सोचें, इमेजिन करें, आप सड़क पे बाहर देखती हैं और किसी को घसीटा जा रहा है, किस बात के ऊपर? ईमान लाया, और उसका ईमान ऐसा मजबूत हो कि चट्टान अपनी जगह से हिल जाए, मगर उसका ईमान मुतजलजल नहीं होता। शाम को ये होता था, सारा दिन धूप में इस तरह से लोहे की जरा पहना के, लोहा सोचें ताकि इतना गर्म हो जाए, वो पहना के लिटाया जाता था, ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे सीने पे, और शाम को लड़के इस तरह घसीटते थे। खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, उम्मे अनमार के गुलाम थे, वो इस्लाम लाए तो उम्मे अनमार ने लोहा गर्म करके ना तो इनके सर पे रखा करती थी, लोहे की सलाखें होती थी, सोचे जरा, लोहे की जब वो रेड हॉट हो जाती तो लेके तो उस उनसे उनका सर दागती थी। एक दफा जब उमर ने इनकी ये कमर देखी थी तो कहा था कि आज तक मैंने ऐसी पुश्त कभी नहीं देखी, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इन काफरों मुझे कोयलों के ऊपर लिटाते थे और वो मेरी चर्बी जो थी कमर की वो पिघलती थी तो उससे वो कोयले ठंडे होते थे। सुभान अल्लाह, इतनी इन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। अगर सुमैया को देखिए, औरत है, औरत, मर्दों की तो बात छोड़ें, औरत के लिए कितना मुश्किल होता है कोई तकलीफ बर्दाश्त करना। अरे धूप में इनको भी लिटा दिया करते थे बांध के, तो एक दिन इनको ऐसे लिटाया हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो फरमाया सबर करो, सबर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत में है। लेकिन अबू जहल को इस पे भी तसल्ली नहीं हुई थी कि बस इतना ही, कोई बात नहीं, इतनी तकलीफ काफी है, उसने बर्छा लेके, नेजा लेके और इनकी शर्मगाह में मार दिया था। और वो भी ऐसे ही नहीं, एक टांग बांध दी थी एक ऊंट के साथ और दूसरी दूसरे ऊंट के साथ, और दोनों को अपोजिट साइड पे चलाया था और फिर बर्छा मारा था। और ये इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली थी। हजरत उमर की बहन देखें, जब इस्लाम लाई है तो हजरत उमर को पता चला था तो उनको इतना मारा था कि उनका सारा जिस्म लहूलुहान हो गया था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि कुछ करना है कर लो, मैं इस्लाम ला चुकी हूं। ऐसे ही नहीं, कुरान इनको कहता अस्साबिकून, 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 उलाइक अल-मुकर्रबून, सब कत्ले जाने वाले हैं, ये सब कत्ले जाने वाले यही हैं मुकर्रब। उन्होंने माल की कुर्बानी दी, उन्होंने जानों की कुर्बानियां दी, उन्होंने इतनी अजियतें बर्दाश्त की। दुनिया जहान की खुशियां इनको मिल गई, जान की कुर्बानी देने का वक्त आया तो ऐसे खुश हैं, खुश होकर गर्दनें कटवा रहे हैं जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जिंदा रहने में नहीं है, मौत में है। और बदर और ओहद के शहीदों के हालात आप पढ़े तो सही, ईमान लाने के बाद इनके हिस्से में क्या आया सिवाय दिन रात की मुसीबतों के, और क्या था? तो इस्लाम को तो फतूहात बाद में मिली ना, इस्लाम को तो गलबा बाद में मिला। ये लोग तो सिर्फ जितना उनका टाइम पीरियड था उसमें तो वो मुसीबतें ही बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर भी उनके दिल खुश थे, इत्मीनान से थे, सुकून के साथ थे। ऐसे वो अपनी जानें दे रहे थे जिस तरह के ये ही सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जंगे उहद में देखे साद बिन रबी को, लोगों ने देखा जख्मों से चूर है, सांस टूट रहा है, किसी ने पूछा कोई वसीयत करनी है, फरमाया अल्लाह के रसूल को मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरी कौम से कहना कि इनके लिए अपनी जाने निछावर कर देना, ये है आखिरी वसीयत। अमारा बिन ज़ियाद को देखें, जख्मों से चूर है, जानकनी की हालत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सरहाने पहुंच गए, फरमाया कोई आरजू है, कोई ख्वाहिश है तो कहो। तो उन्होंने अपना जख्मी जिस्म ना घसीट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया और अपना सर मुबारक आपके कदमों पे रख दिया और फरमाने लगे अगर कोई आरजू हो सकती थी तो बस यही है कि मेरा सर आपके कदमों में हो। उस वक्त भी शिकायत नहीं है क्या, हमने इस्लाम के लिए जाने दे दी, हमने ये कर दिया और हम क्या करें, हमने घर छोड़ दिया और अब क्या करें, हम लड़ने भी चल पड़े, हमने घर बार छोड़े, कारोबार छोड़े, काम धंधे छोड़े, फैमिलीज छोड़ी, अब और इस्लाम हमसे क्या चाहता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। औरतों का हाल यह है कि एक वक्त में हस्बैंड भी, भाई भी, बाप भी शहीद हो रहे हैं और वो कहती हैं ये हुआ तो हुआ लेकिन ये बताओ अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। और उनके ऊपर नजर पड़ती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो ठीक ठाक है, ओहद में क्योंकि ये पता चला था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नजर पड़ी कि वो ठीक है तो कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है तो सब ठीक है, चाहे सब कुछ चला जाए। अल्लाह अल्लाह ताला को ऐसा ईमान चाहिए। आज तो हमसे कोई भी कुर्बानी नहीं मांगी गई, ऐसा तो कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। अल्लाह माफ करे, कोयलों पे किसी को नहीं घसीटा जा रहा। अल्लाह माफ करे, किसी के सर के ऊपर लोहे को गर्म करके नहीं दागा जा रहा उसके सर को। लेकिन फिर भी ईमान का लेवल क्या है? सुभान अल्लाह, मुझे वो हदीस याद आ गई, किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि या रसूल अल्लाह कि वो हमें वो कौन सा वक्त कितना अच्छा होगा ना कि हमारे पास जब माल वगैरह आ जाएगा, हम ये इन रिस्क रोजी के धंधों से निकलेंगे तो हम आराम से अल्लाह अल्लाह करेंगे। मतलब ये माश की हमें फिक्रें नहीं होंगी और ये नहीं होंगी तो हम आराम से अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। फिर अभी तो मतलब है ना, इतनी गुर्बत थी, फकरो फाका भी था, मोहताजियां थी, तो जाहिर है ये एक फिक्र रहती थी। तो जैसे इंसान के जेहन में होता है ना, हाँ मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो चलो फिर मुझे ये फिक्रें नहीं रहेंगी, पैसों की तरफ से मैं आजाद हो जाऊंगी, फिर मैं आराम से अपने दीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, एक वक्त माल और दौलत तो बहुत आ जाएगा लेकिन दीन नहीं रहेगा। उसमें लोग इतने दुनिया के पीछे ऐसी उसकी मोहब्बत के अंदर दीवाने हो जाएंगे कि इस दीन से ही दूर हो जाएंगे। वो वक्त आ गया ना, आज तो कोई भी तकलीफ नहीं है लेकिन दुनिया की मोहब्बत ही इतनी ज्यादा है कि इसको छोड़ना मुमकिन नहीं है। इसके लिए कुर्बानी, इसको कुर्बान करना, थोड़े से नफे को भी, थोड़ा सा फायदा भी मैं अपना कुर्बान करूं, थोड़ी सी भी मैं मुश्किल उठा लूं, वो नहीं है मेरे अंदर हौसला। क्या किसी ने अंगारों पे या किसी ने धूपों में लिटाना है? हमसे तो इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दी जाती कि थोड़ा सा वक्त हम कुर्बान करते, घर के थोड़े काम ही पीछे करते, घर की सफाइयां सुथराइयां थोड़ी कम कर लें। हमसे तो इतनी कुर्बानी नहीं दी जाती, आप हमसे और कुर्बानियां मांगते हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है। हमारे ईमान का लेवल फिर देख लें सुभान अल्लाह क्या है। अल्लाह अकबर।